नमस्कार भारत, 30 जून दिन गुरुवार, मैं हूं संदीप सोनी। अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा, यूरोपीय संघ से अलग होने की वजह से ब्रिटेन और यूरोप के अन्य देशों में निवेश पर बुरा असर पड़ सकता है।
With respect to Brexit, I think it's important to point out that those who argued about leaving the European Union are the same folks who...
ओबामा की चिंता के विपरीत भारतीय वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण का दावा,
मैं मानती हूँ नया इन्वेस्टर्स भी आएंगे और जो भारत देश में ही हैं वो भी एक्सपैंड करने का मौका मिलेगा।
सुनिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर पूर्व कैबिनेट सचिव टीएसआर सुब्रमण्यम की राय, खेल समाचार और समाचार पत्रों की सुर्खियां, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार हरिता कांडपाल से। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से बाहर होने के फैसले का असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर लंबे समय तक रहने को लेकर चिंता जाहिर की है। बराक ओबामा ने कहा कि इससे ब्रिटेन और यूरोप में निवेश और विकास पर असर पड़ सकता है। उन्होंने अपील की है कि ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से बाहर होने की सुव्यवस्थित प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कार्यालय के सूत्रों से खबर आ रही है कि ये माना जा रहा है कि यूरोपीय संघ से ब्रिटेन की विदाई के लिए बातचीत और मोलतोल में 5 साल का समय लग सकता है। सूत्रों का कहना है कि 4 दशकों के समझौतों की जगह ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के बीच नए समझौते करने में लंबा समय लग जाएगा। ब्रिटेन सरकार का मानना है कि फ्रांस की सरकार फ्रांस में यूरोपीय संघ के विरोधियों को कड़ा संदेश देने के लिए इस बातचीत को काफी मुश्किल बना सकती है। वहीं फ्रांस के विदेश मंत्री मिशेल सेपिन ने संकेत दिए हैं कि ब्रिटेन से मुक्त आवाजाही समेत हर मुद्दे पर बातचीत होगी।
Everything will be on the table because Britain will make proposals and will negotiate all these.
ब्रिटेन के साथ हर मुद्दे पर बातचीत होगी क्योंकि वो समझौते के लिए सभी मुद्दों को सामने रखेगा, लेकिन जब तक ब्रिटेन औपचारिक तौर पर अलग होने का प्रस्ताव नहीं देता तब तक ये बातचीत शुरू नहीं होगी। ब्रिटेन की स्थिति पहले जैसी नहीं रहेगी, चीजें बदल जाएंगी। अभी से ही स्थितियां बदल गई हैं, हम फिर शून्य पर पहुंच गए हैं एक साफ स्लेट की तरह। ये थे मिशेल सेपिन के शब्द, आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अमरीकी खुफिया एजेंसी CIA के निदेशक जॉन ब्रेनन का मानना है कि तुर्की में इस्तांबुल के अतातुर्क अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आत्मघाती हमले के पीछे चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट का हाथ है। कल हवाई अड्डे पर आत्मघाती हमले में 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। उन्होंने आशंका जताई कि अमरीका पर भी इस्लामिक स्टेट इस तरह की हमले की योजना बना रहा हो सकता है। तुर्की के अधिकारियों ने भी इस्तांबुल में हवाई अड्डे पर हमले के लिए IS को जिम्मेदार ठहराया है, लेकिन अभी तक किसी गुट ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। मिस्र के जांचकर्ताओं का कहना है कि भूमध्य सागर में हादसे का शिकार हुए इजिप्ट एयर के विमान के ब्लैक बॉक्स से विमान के भीतर धुएं की मौजूदगी की पुष्टि हुई है। विमान की ओर से भेजे गए ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नलों से पता चलता है कि विमान के एक टॉयलेट और कॉकपिट के नीचे धुएं का संकेत देने वाली प्रणाली काम नहीं कर रही थी। इन संदेशों के चंद मिनट बाद इजिप्ट एयर का ये विमान लापता हो गया था। ये दुर्घटना इसी साल मई में तब हुई थी जब ये विमान पेरिस से काहिरा की उड़ान पर था और इसमें 66 लोगों की मौत हो गई थी। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी से दिन की पहली सभा नमस्कार भारत में सभी श्रोताओं को संदीप सोनी का नमस्कार। आप इस कार्यक्रम को रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर और अपने मोबाइल फोन पर भी सुन रहे हैं। नमस्कार भारत का सीधा प्रसारण। भारत में केंद्र सरकार के कर्मचारी खुश हैं कि उनका वेतन बढ़ने वाला है। वाणिज्य मंत्री इस उम्मीद से खुश हैं कि भारत में विदेशी निवेश बढ़ने वाला है, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा खुश नहीं हैं। उन्हें ब्रिटेन और यूरोप की आर्थिक उन्नति के रास्ते में कांटे नजर आ रहे हैं और इन कांटों की वजह है ब्रिटेन का यूरोपीय संघ से अलग होने का फैसला। यही है नमस्कार भारत की पहली खबर। इस खबर पर और जानकारी दे रही हैं हरिता कांडपाल।
अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा है कि ब्रिटेन के यूरोपीय संघ छोड़ने के फैसले के बाद भी अमेरिका और ब्रिटेन का रिश्ता खास रहेगा। हालांकि ओबामा ने ब्रेक्सिट का असर दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ने को लेकर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से बाहर होने से ब्रिटेन ही नहीं बाकी यूरोप में भी निवेश और अर्थव्यवस्था के विकास पर असर पड़ सकता है। उन्होंने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन और यूरोपीय नेताओं से ब्रेक्सिट की प्रक्रिया को सुनियोजित तरीके से आगे बढ़ाने की अपील की है। जनमत संग्रह से पहले ही ओबामा ने ब्रेक्सिट के बुरे असर के बारे में चेतावनी दी थी। ओटावा सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे ओबामा ने ब्रेक्सिट के पक्ष में प्रचार करने वालों पर निशाना साधा। ब्रेक्सिट के संदर्भ में मुझे ये अहम लगता है कि जिन लोगों ने यूरोपीय संघ छोड़ने के पक्ष में प्रचार किया वो जनमत संग्रह के अगले दिन कह रहे थे कि चिंता ना करें, हमें मुक्त बाजार तक पहुंच मिलेगी। लगता है इनका विरोध व्यापार को लेकर नहीं रहा होगा। इन लोगों को मुक्त बाजार तक बिना किसी बंधन के पहुँच चाहिए। ओटावा सम्मेलन में भाग लेने गए ओबामा कनाडा की संसद में बोल रहे थे। अमरीका और ब्रिटेन लंबे समय से काफी करीबी सहयोगी रहे हैं। यूरोपीय संघ में अमरीकी हितों का प्रतिनिधित्व एक तरह से ब्रिटेन करता रहा है, लेकिन ब्रेक्सिट के बाद अमेरिका के यूरोप से किस तरह के रिश्ते होंगे इस पर नेटो गठबंधन सेना के पूर्व अमेरिकी राजदूत निकोलस बर्न्स का कहना है कि ब्रिटेन अगर वाकई यूरोपीय संघ छोड़ देता है तो अमेरिका यूरोप में नए साझेदार के तौर पर जर्मनी का हाथ थाम सकता है। ये सच है कि जर्मनी यूरोपीय संघ में एक शक्तिशाली देश बनकर उभरा है। ब्रिटेन अगर यूरोपीय संघ छोड़ देता है तो हमें एक सहयोगी की जरूरत होगी। हाँ, ये रिश्ता लंदन के जैसा नहीं होगा, लेकिन एक ऐसा साथी ढूंढना होगा जिसके साथ हम गंभीरता से काम कर सकें। ये जर्मनी हो सकता है। ब्रिटेन की यूरोपीय संघ छोड़ने की राह इतनी आसान नहीं है। ब्रिटेन के भीतर अभी मची राजनीतिक हलचल के बीच भविष्य की तस्वीर साफ होने में समय लगेगा, लेकिन यूरोपीय संघ के नेताओं ने साफ कर दिया है कि ब्रिटेन के लिए कोई खास रियायत नहीं दी जाएगी। ब्रेक्सिट के प्रचार में प्रवासियों का मुद्दा काफी ऊपर रहा था। इसमें यूरोपीय संघ के गरीब सदस्य देशों से आने वाले प्रवासियों का मुद्दा भी अहम था।
अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा है कि यूरोपीय संघ से अलग होने की वजह से ब्रिटेन और यूरोप के अन्य देशों में निवेश पर बुरा असर पड़ सकता है। रिपोर्ट सुना रही थी हरिता कांडपाल। वहीं ओबामा की चिंता के विपरीत अफ्रीकी देश केन्या में रेगिस्तान के जहाज अपने दूध की बदौलत कारोबार में 4 चांद लगा रहे हैं। कैसे, सुनिए बीबीसी संवाददाता हाना मैकनिश की रिपोर्ट सुमिरन प्रीत कौर से।
ऊंट का दूध वैसे तो कई लोगों को पसंद नहीं आता, लेकिन उत्तरी केन्या में ऊंट पालने वाले इसका दूध बेचकर काफी मुनाफा कमा रहे हैं क्योंकि इसकी मांग बहुत बढ़ गई है। उत्तरी केन्या के इसी योलो में रहने वाली मरियम उस्मान बताती हैं।
मैंने दूध बेचने से मिले पैसे से एक दुकान खोली है। इसी योलो में ऊंट का 1 लीटर दूध 150 कीनियाई शिलिंग में मिलता है, जो कि पहले 40 शिलिंग में मिला करता था। हाल के वर्षों में इसकी कीमत काफी बढ़ी है।
केन्या में ऊंट के दूध का सालाना कारोबार करीब $50 करोड़ का है और इसमें बढ़ोतरी की अभी बहुत संभावना है। संयुक्त राष्ट्र की खाद्य और कृषि संस्था का कहना है कि ऊंट के दूध का वैश्विक कारोबार करीब $10 अरब का है। पूर्वी अफ्रीका में दुनिया में ऊंट की कुल आबादी का 60% पाया जाता है और इसे ऊंट के दूध के कारोबार का केंद्र बनाया जा सकता है। लेकिन हालात ये हैं कि केन्या में दूध के उत्पादक घरेलू मांग भी पूरी नहीं कर पा रहे। केन्या में पिछले सालों में ऊंट की तादाद में 3 गुना बढ़ोतरी हुई है और ये 30 लाख तक पहुँच गई है। इन सालों में दूध की कीमत में भी इजाफा हुआ है। इसी योलो में ऊंट पालने वाले कारोबार के रुख से बेहद खुश हैं। एक डच एजेंसी SNV ने ऊंट के दूध की सहकारी समिति बनाने में यहाँ की महिलाओं की मदद की है। मवेशियों के एक विशेषज्ञ पॉल इसाक को बताते हैं।
हमारे प्रयास से दूध का कारोबार रोजाना 500 लीटर से बढ़कर 3000 लीटर का हो गया है और इससे मुनाफे में 30% की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि मांग की तुलना में उत्पादन अभी भी कम है।
हालांकि जलवायु में हो रहे परिवर्तन और पूर्वी अफ्रीका में सूखे के हालात को देखते हुए ऊंट के दूध से एक उम्मीद जगी है। जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ ब्रायन हार्डिंग कहते हैं,
As the world warms, جیسے جیسے دنیا گرم ہو رہی ہے، جلوایو پریورتن ہو رہا ہے، پوربی افریقہ میں سوکھا بھی بڑھ رہا ہے، آنے والے سمے میں حالات اور برے ہوں گے۔ ایسے میں اسی لیے کی مہیلائیں جلوایو پریورتن سے مقابلہ کرنے کا ایک راستہ سجھا رہی ہیں۔
اونٹ کے دودھ کے کاروبار کو مکھیہ دھارا کا حصہ بننے میں ابھی دیر ہے، لیکن اسی یولو کے ان اونٹ پالکوں کے لیے تو فی الحال یہ منافع کا سودا ثابت ہو رہا ہے۔
افریقی دیش کینیا میں اونٹوں نے دودھ کے کاروبار میں چار چاند لگائے، رپورٹ سنا رہی تھیں سمیرن پریت کور۔ ادھر بھارتی وانجیہ منتری نرملا سیتارمن اس امید سے خوش ہیں کہ بھارت میں ودیشی نویش بڑھنے کا سمے آ گیا ہے۔ انہیں لگتا ہے کہ برٹین یوروپی سنگھ کے ساتھ رہے نہ رہے، اس سے بھارت کی آرتھک صحت پر کوئی اثر نہیں پڑنے والا۔ اس بارے میں اور کچھ انیہ حالیہ آرتھک خبروں کے سندرب میں بی بی سی سنواد داتا شلپا کنن نے کیندری وانجیہ منتری نرملا سیتارمن سے بات کی۔
کیا اس دیش میں ودیشی انویسٹمنٹ بڑھے گا، کیا امید ہے؟
ضرور بڑھے گا، سرکار کی ان قدموں کی وجہ سے میں مانتی ہوں نیا انویسٹرز بھی آئیں گے اور جو بھارت دیش میں ہی ہیں وہ بھی ایکسپینڈ کرنے کا موقع ملے گا۔ میں مانتی ہوں اس کے وجہ سے بھارت دیش کے امیج جو ہے اس میں بدلاؤ آئے گا۔
بریکسٹ سے انڈین ٹریڈ پالیسی پر کیا اثر پڑے گا، سرکار اسے نپٹانے کے لیے کیا کر رہی ہے؟
ہم بریکسٹ جب سے چرچا میں آئے اس سمے سے بریکسٹ کا جو بھی فیصلہ برٹش ناگرک کریں گے اس کے اوپر ادھیان کرتے آئے، فیصلہ جس اور بھی جائیں ہم تیار ہیں اس کے لیے۔ میں مانتی ہوں ٹریڈ نیگوسیشن میں ابھی نیا چنتا کرنے کا آوشک ہے، اور اس راستے پہ چلتے ہوئے یورپین یونین کے ساتھ جو ہم نیگوسیٹ کریں گے اس کے لیے ایک طریقہ اپنانا ہے، اور شاید یہ جلدی میں بول رہی ہوں پھر بھی یو کے ساتھ بھی الگ سے ایف ڈی اے کرنے کا آوشک۔
ایف ڈی آئی کے اوپر بھارتیہ جنتا پارٹی اپوز کرتی رہی ہے، خاص کر ڈیفینس میں، پر سرکار میں آنے پر این ڈی اے سرکار نے ایف ڈی آئی لاگو کر دیا، اسے کیوں؟
ایف ڈی آئی کے خلاف بی جے پی نہیں تھی، ایف ڈی آئی ان ملٹی برانڈ ریٹیل کے خلاف ضرور تھی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر ایک ایف ڈی آئی کے خلاف بی جے پی تھی، اس لیے وہ غلط فہمی ہے۔ ایف ڈی آئی ملٹی برانڈ ریٹ خودرا ویاپار کے خلاف تھے ہم اور ابھی بھی ہیں۔
ایک ریسنٹ رپورٹ آیا ہے کرول نیو یارک بیس فرم سے کہ بھارت دیش میں کارپوریٹ فراڈ 25% بڑھا ہے، لیکن سرکار تو کرپشن پر بہت کلیم کر رہی ہے، تو اس پہ کیا آپ کا ریئیکشن ہوگی؟
کالا دھن کرنے والے یا ٹیکس ایویشن کرنے والے بھارت دیش میں رہیں یا ودیش میں رہیں ان کے اوپر کاروائی سخت کر رہے یہ سرکار۔ وہ سرویس کے دوارا جو بھی رپورٹ آیا ہے اس کو بھی ہم سنگیان میں لیں گے، مگر ہمارے ایکشن تو ضرور سخت ہوگا۔
یہ تھیں بھارتی وانجیہ منتری نرملا سیتارمن، اور جیسا کہ آپ نے اس کاریکرم کی شروعات میں سنا، بھارت میں کیندر سرکار کے کرمچاری خوش ہیں کیونکہ ان کی تنخواہ بڑھنے والی ہے۔ کیندری منتری منڈل نے ساتویں ویتن آیوگ کی سفارشوں کو منظوری دے دی ہے۔ ان سفارشوں اور اس کے دوسرے پہلوؤں پر ہمارے سہیوگی امریش دیویدی نے پورو کیبنٹ سچیو ٹی ایس آر سبرمنیم سے بات کی۔
سبرمنیم صاحب، کیندری کرمچاریوں کی تنخواہ قریب 24% بڑھ گئی ہے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟
پے کمیشن کے ریکمنڈیشن ہر 10 سال آتے ہیں، اس حساب سے تو یہ تو 7th پے کمیشن ہے، آزادی کے بعد 6-7 بار بڑھا ہے۔ عام طور پہ 20-30-40% ہر 10 سال میں بڑھتا ہے، ابھی تک پرمپرا رہی ہے۔
جو سب سے کم تنخواہ ہے اب 7,000 سے بڑھ کر 18,000 روپے ہو گئی ہے، اور جو سب سے زیادہ تنخواہ ہے وہ قریب کیبنٹ سیکرٹری کی 2.5 لاکھ بتائی جا رہی ہے کہ ہو گئی ہے۔ دنیا کے بارے میں اگر ہم بات کریں، پوری دنیا بھر میں سول سرونٹس کو تنخواہ ملتی ہے، اس کے پریپریکش میں، اس کے کانٹیکس میں اگر ہم دیکھیں تو آپ کیا پاتے ہیں بھارت میں اب سیلری کا اسٹرکچر کیسا ہو گیا ہے؟
مجھے اب بھی یاد ہے 1950 میں شاید ایک چپراسی کا کلاس 4 27 روپیہ تھا تنخواہ۔ ابھی میں سمجھ رہا ہوں کہ کلاس سی ان کا تنخواہ جو ہے وہ قریب قریب مارکیٹ بیسس میں آ چکا ہے۔ ہائر لیول پہ آپ دیکھیں گے کہ کلاس اے اینڈ بی ان کو آپ دیکھیں گے کہ مارکیٹ سے قریب قریب پیریٹی ہے कह सकते हैं, लेकिन ये भी उसमें आपका अकाउंट में लेना पड़ेगा कि गवर्नमेंट सर्वेंट का सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है, उन्हें आमतौर पे घर में भेजा जाता है और उसका पेंशन मिलता है और उनका हेल्थ इंश्योरेंस या हेल्थ फैसिलिटी भी होता है। तो ये सब आप ले लेंगे तो आमतौर पे लोअर लेवल पे मार्केट से हायर और हायर लेवल पे मार्केट से बराबर, द पे इज नॉट रिलेटेड टू परफॉर्मेंस।
सुब्रमण्यम साहब, अब जो तनख्वाह का स्ट्रक्चर दिख रहा है उसमें यह है कि जो लॉ मेकर्स हैं, जो लेजिस्लेचर है हमारे, उनकी तनख्वाह से भी ज्यादा तनख्वाह हो गई है जो सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं उनकी। क्या इसका कोई कैस्केडिंग इफेक्ट होगा? क्या उनकी तरफ से भी जो लॉ मेकर्स हैं, एमएलएज हैं, एमपीज हैं, उनकी तरफ से भी मांग बढ़ेगी कि हमारी तनख्वाह भी बढ़ाई जानी चाहिए?
लॉ मेकर पब्लिक सर्वेंट्स हैं, वो अब नौकरी की बेसिस में नहीं आते हैं सर्विस करने के लिए, वो आते हैं पब्लिक सर्विस करने के लिए।
ये जो पे हाइक है इससे अर्थव्यवस्था यानी पब्लिक एक्सचेकर को लगभग 1,00,000 करोड़ रुपए सालाना खर्च करना पड़ेगा। एक तो कि उसको किस तरह से उसको मीट किया जाएगा इसका मैकेनिज्म तो है, लेकिन इसी से जुड़ा हुआ इसका आर्थिक पहलू है कि अर्थव्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं है, तो क्या इससे अर्थव्यवस्था को बूस्ट मिलेगा? जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर है वो बढ़ेगा, किस तरह से देखते हैं आप?
नंबर वन, इमीडिएट इफेक्ट इसका होगा कि गवर्नमेंट सर्वेंट के हाथ में जितना पैसा हाथ है उसका इन्फ्लेशनरी टेंडेंसी मार्केट में हो जाएगा। ये थ्योरी ये रहा है कि इससे इकोनॉमी में स्पेंडिंग होगा, बूस्ट होगा, कुछ हद तक सही है, लेकिन ये अनप्रोडक्टिव, जो इकोनॉमी की ताकत चाहिए, वो इंजेक्शन चाहिए, वो ये तो आर्टिफिशियल होगा कि तनख्वाह बढ़ा के आप बूस्ट करेंगे इकोनॉमी को। हाँ, इमीडिएट बेनिफिट तो होगा, थोड़ा डिमांड में टेलीविजन ये भी वो वोटरकार इस किस्म की डिमांड में तो जरूर आएगा जरूर, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका कोई खास असर नहीं होना।
सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर ये थे पूर्व कैबिनेट सचिव टीएसआर सुब्रमण्यम। और मुझे पूरा भरोसा है भारत में आज कोई भी अखबार ऐसा नहीं होगा जिसके पहले पन्ने पर वेतन आयोग की सिफारिश वाली खबर ना छपी हो। हरिता कांडपाल मेरे सामने बैठी हैं, बताइए श्रोताओं को क्या कह रहे हैं आज के अखबार।
जी, सभी अखबारों में आज यही सुर्खी बनी है, सरकारी कर्मचारियों के लिए बोनांसा।
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए,
हाँ, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए। टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार ने लिखा है कि 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए 85,000 करोड़ रुपए का बोनांसा, उसकी घोषणा की गई है। और अखबार ने इसमें सारी जो जानकारी वो तो दी है जिस तरह हमने भी दी, उसमें ये चीज़ भी कही गई है कि आवासीय निर्माण क्षेत्र में काफ़ी इसमें फ़ायदा मिलने की उम्मीद है, क्योंकि जो आवासीय निर्माण कर्ज की सीमा थी वो 7.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी गई है। और अखबार ये भी लिखता है कि 47 लाख केंद्र कर्मचारी हैं जो अभी काम कर रहे हैं, और इसमें 53 लाख पेंशन भोगी हैं जिनके लिए ये घोषणा की गई है। तो ये एक महत्वपूर्ण आंकड़ा है जिस पर आगे कई बार बातचीत होने की उम्मीद है। इसके अलावा दैनिक भास्कर ने लिखा है कि ऑटो सेक्टर में भी जो है 15-20% की बढ़त की संभावना इस नए वेतनमान के बाद देखी जा सकती है, और 1 जनवरी 2016 से अरियर लागू किया जाएगा, लेकिन इसका भुगतान इसी साल किया जाएगा ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन कब किया जाएगा ये नहीं बताया गया। इसके अलावा कम बढ़ोतरी से भी कुछ कर्मचारी संगठन खफा हैं, दैनिक भास्कर ये लिखता है कि 11 जुलाई से हड़ताल की चेतावनी भी दे दी गई है। हालांकि काफ़ी खुशी की खबरें हम सब तरफ सुन रहे हैं कि इससे काफ़ी फ़ायदा केंद्र सरकार के कर्मचारियों के अलावा बाज़ार में भी होगा, लेकिन ये भी एक खबर थी कि हड़ताल की चेतावनी दी गई है। हिंदुस्तान अखबार ने एक संपादकीय पन्ने पर लेख छापा है, कन्हैया सिंह जी का ये लेख है, उसमें लिखा है कि बढ़ा वेतन बाज़ार को ताकत देगा। वो लिखते हैं कि कर्मचारियों का वेतन बढ़ने का ये काफ़ी अच्छा समय है, अभी जो दुनिया के हालात हैं उसमें बढ़ा वेतन हमारी अर्थव्यवस्था को नई गति दे सकता है, और महंगाई का खतरा ज़रूर है पर अच्छा मानसून इससे ज़्यादा बढ़ने नहीं देगा। तो ये भी एक पहलू है जिसे हिंदुस्तान अखबार ने कवर किया है। और फाइनेंशियल एक्सप्रेस की बात करें तो फाइनेंशियल एक्सप्रेस लिखता है कि बाबू बोनांजा पर बाजारों बाजार भी खुश हैं, बाजारों ने इस फैसले का स्वागत किया है। लेकिन अखबार लिखता है कि 1,00,000 करोड़ रुपए के होना है खर्च सरकार का, उसमें जो वापस आएगा, जो खर्च करेंगे कर्मचारी, वो सिर्फ आधा हो सकता है आपकी सेविंग्स और टैक्स पर, क्योंकि इसमें यह है कि कुछ इसमें से हिस्सा वो अगले साल के लिए चिन्हित हो रहा है, ये लिखा है। इसके अलावा एक और खबर जो सारे अखबारों में छाई हुई है वो ये कि 24 घंटे खुले रह सकेंगे अब मॉल और दुकान। जी, ये जनसत्ता की खबर है, सभी अखबारों के पहले पन्ने पर मैं देख रही हूँ। जो पैसा बढ़ेगा तो फिर मॉल और दुकानें भी जो 24 घंटे खुली रहेंगी उसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग खर्च कर सकेंगे। इसमें ये बताया गया है कि सरकार ने दुकानों, शॉपिंग मॉल और सिनेमा हॉल सहित दूसरे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को साल भर 24 घंटे खुला रखने की इजाज़त देने वाले एक मॉडल कानून को बुधवार को मंजूरी दे दी है। और कश्मीर पर नेहरू की ऐतिहासिक भूल, अमित शाह भाजपा अध्यक्ष ये कह रहे हैं। जनसत्ता एक्सप्रेस ने पहले पन्ने पर इस खबर को छापा है। उन्होंने कहा है कि देश के विभाजन के लिए तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्व की उन्होंने आलोचना की है। शाह ने 1948 में उस संघर्ष विराम की घोषणा का हवाला दिया जब पाकिस्तान के कबायली हमलावरों को कश्मीर से खदेड़ा जा रहा था, तो प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को उन्होंने निशाना बनाया है।
दिल्ली से छपने वाले अखबारों में क्या कुछ छपा है विस्तार से बता रही थी हरिता कांडपाल।
बीबीसी हिंदी रेडियो पर बुधवार को दुनिया जहां,
अंतर्राष्ट्रीय खबरों के पीछे का सच,
शुक्रवार को इतिहास की परतें खोलती विवेचना,
और शनिवार को आपकी आवाज इंडिया बोल।
नमस्कार, भारत सुन रहे हैं आप, संदीप सोनी के साथ। आज दिन है गुरुवार, तारीख 30 जून, महीने का आखिरी दिन। और आइए अब चलते हैं एक लाइब्रेरी, जो कोई ऐसी वैसी लाइब्रेरी नहीं है, कुछ खास है इसमें, चलिए चलते हैं।
आइए सर जी, आइए चांदनी चौक मार्केट, पराठे वाली गली, दरियागंज, नई दिल्ली, पराठे वाली गली और फतेहपुरी क्रेम है, चाहिए।
रिक्शो और मोटर गाड़ियों का शोर, मैं हूँ चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के सामने, जो कि दिल्ली में है, या यूं कहें कि पुरानी दिल्ली में है। मेरे सामने एक बगीचा है और खूबसूरत बिल्डिंग जिस पर लिखा है हरदयाल म्यूनिसिपल पब्लिक लाइब्रेरी। इस लाइब्रेरी को इस साल 100 साल हो गए हैं। लाला हरदयाल, जिनके नाम पर ये लाइब्रेरी है, वो एक स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने अमरीका में गदर पार्टी बनाई थी जिसका मकसद भारत को आज़ाद कराना था। ये लाइब्रेरी पहले हार्डिंग म्यूनिसिपल पब्लिक लाइब्रेरी के नाम से जानी जाती थी, पर साल 1970 में इसका नाम बदल के हरदयाल म्यूनिसिपल पब्लिक लाइब्रेरी रख दिया गया। तो आइए आइए इस लाइब्रेरी के अंदर चलते हैं और देखते हैं यहाँ की किताबें। लाइब्रेरी में पुराने फर्नीचर जैसी खुशबू आ रही है, जैसे कि किसी बड़े ऑडिटोरियम में अमूमन आती है। वक्त में पीछे चले जाते हैं आप। अब मेरे साथ इस वक्त हैं लाइब्रेरी की असिस्टेंट लाइब्रेरियन सुधा टंडन, जो हमें बता रही हैं कि लाइब्रेरी की सबसे पुरानी किताब कौन सी है।
उर्दू की सबसे पुरानी किताब है महाभारत, जो 1865 में हमारे पास आई, और ये अब्दुल फजल और फैजी ने, अकबर के 9 रत्नों में से रत्न थे, उनके द्वारा लिखी गई किताब है। ये फारसी में तर्जुमा है और इस किताब को पढ़ने के लिए दूर दराज से काफ़ी लोग हमारे पास आते हैं जो इसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं। इस पर सोने का काम किया गया है।
और वैसे मैं आपको बता दूं कि उर्दू के साथ साथ यहाँ ब्रज भाषा में लिखी पहली किताब भी मौजूद है, जो साल 1881 में लिखी गई है, और इसके साथ मौजूद है सन 1634 में लिखी गई किताब, जिसके बारे में हमें बता रही हैं लाइब्रेरी में कार्यरत प्रिया संधू जी।
रीजन ऑफ सम ईयर्स हर्बल थॉमस की लिखी हुई है, जो कि 1626 में उन्होंने लिखना शुरू करा था और 1634 में ये बनके तैयार हुई थी और ये लंदन में छपी थी। और इस किताब के अंदर अफ्रीकन एंड ग्रेट एशिया विजिट एक्सपीरियंस लिखे गए हैं।
अभी इस वक्त मैं लाइब्रेरी के रीडिंग सेक्शन में हूँ, जहाँ अमूमन बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं, और अभी मैं उन्हीं के साथ खड़ा हूँ। सुमित जी, ये बताएं कि आप क्या पढ़ते हैं लाइब्रेरी में, और क्या इसी लाइब्रेरी में आते हैं या किसी और लाइब्रेरी में भी आप जाते हैं?
लगभग 7 साल हो गए हैं, मेरे को अच्छा लगा तो मैं यहीं आ रहा हूँ। ऑलमोस्ट यहाँ के जो फैसिलिटीज़ वगैरह है ठीक है, और मैं बेसिकली जनरल स्टडी के लिए तैयारी करने के लिए आता हूँ।
और अगर आप लाइब्रेरी में बैठे बैठे पढ़ते पढ़ते ऊब गए हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, बस लाइब्रेरी से बाहर निकलिए और रिक्शे वाले को बोलिए कि आपको चांदनी चौक ले जाए, और चांदनी चौक में आप माहौल का लुत्फ़ उठा सकते हैं। और अगर आपको लाइब्रेरी में ही रहना है तो यहाँ पर एक 150 साल पुराना जीना है जिस पर चढ़ते हुए आपको देवानंद के उस गाने की याद आ जाएगी, दिल का भंवर करे पुकार,
प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे।
कई स्टूडेंट्स ने बताया कि लाइब्रेरी का स्टाफ काफ़ी मददगार है और उन्हें वो किताबें मुहैया कराता है जो बाज़ार में काफ़ी महंगी मिलती हैं। पर इस लाइब्रेरी की सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि यहाँ 5 साल से कोई नई किताब नहीं आई है। नई किताबों के अभाव के साथ साथ यहाँ पर कर्मचारियों को पिछले कुछ महीनों से तनख्वाह भी नहीं मिली है।
सर एक्चुअली क्या है, वैसे लाइब्रेरी का हमारा जो अपना माहौल बहुत बढ़िया है यहाँ का, एक थोड़ी दिक्कत ये है कि हमें वो सैलरी टाइम पे नहीं मिल पाती, बाकी हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम फिर भी अपने जान से पूरी मेहनत करते हैं, जो जो भी सुविधा हम दे सकते हैं स्टूडेंट को पूरी सुविधा देते हैं।
अपनी परेशानियों से जूझती और विद्यार्थियों के लिए एक ज्ञान का भंडार इस लाइब्रेरी को 100 साल पूरे हो गए हैं। उम्मीद करते हैं कि ये आने वाले 100 सालों तक यूं ही खड़ी रहेगी और युवाओं में पढ़ने की रुचि को बढ़ा पाएगी। विदित मेहरा, BBC दिल्ली।
पढ़ने के साथ खेलना भी जरूरी है, सुनते हैं खेल समाचार।
विंबलडन 2016 अपडेट।
विंबलडन पर लंदन से BBC हिंदी सेवा की खास पेशकश में स्वागत है आपका, मैं हूं अपूर्व कृष्ण। लंदन के आसमान पर कल पूरे दिन बादल छाए रहे और बूंदाबांदी होती रही। नतीजा विंबलडन में कल 30वें दिन ज्यादातर मैच या तो बीच में ही रोक देने पड़े या रद्द हो गए। एक अकेले सेंटर कोर्ट पर खेल बिना किसी रुकावट के हो सका। इसका फायदा मिला नोवाक जोकोविच, रोजर फेडरर और अग्नियंस्का राद्वांस्का को, जिन्होंने अपने मैच जीतकर अगले दौर में जगह बनाई। कल सेंटर कोर्ट पर दुनिया के पहले नंबर के खिलाड़ी और पिछले 2 बार के विंबलडन विजेता सर्बिया के नोवाक जोकोविच का मुकाबला फ्रांस के एड्रियान मनारिनो से था। जोकोविच ने मैच 6-4, 6-3, 7-6 से जीतकर तीसरे दौर में प्रवेश किया। ग्रैंड स्लैम मुकाबलों में जोकोविच की ये लगातार 30वीं जीत थी। सेंटर कोर्ट पर एक और बड़ा मैच हुआ 7 बार के विंबलडन विजेता स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर का। दुनिया के तीसरे नंबर के खिलाड़ी के सामने थे दुनिया के 772वें नंबर के ब्रिटेन के खिलाड़ी मार्कस विलिस। फेडरर ने 1.5 घंटे से भी कम समय में मैच 6-0, 6-3, 6-4 से जीत तीसरे दौर में कदम रखा। 17 ग्रैंड स्लैम खिताबों के विजेता 34 वर्षीय फेडरर अपने शानदार करियर में पहली बार फिटनेस की समस्या से जूझ रहे हैं। इस साल उन्हें पीठ की दर्द के कारण फ्रेंच ओपन से नाम वापस लेना पड़ा था। कल के मैच के बाद उनसे फिटनेस के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा,
Yeah, I mean, look, it's the second round. The grass is still very, very fresh, so it's...
ये दूसरा राउंड है, घास अभी भी काफी ताजी है, तो सावधान रहना पड़ता है कि कहीं आप फिसल न जाएं। तो ये मैच आसान नहीं था, मगर मैं अच्छा खेल रहा हूं और खुश हूं कि तीसरे राउंड में आ गया। रोजर फेडरर के शब्द। कल 10वीं सीट के चेक रिपब्लिक के खिलाड़ी टॉमस बेर्डिक ने मंगलवार को अधूरा रहा अपना पहले दौर का मैच पूरा किया और क्रोएशिया के इवान डोडिक को 7-6, 5-7, 6-1 और 7-6 से हराया। महिलाओं के वर्ग में कल सेंटर कोर्ट पर तीसरी सीट की खिलाड़ी पोलैंड की एग्नियस्का राद्वांस्का अपना पहले दौर का मैच खेलने उतरी। 2012 का विंबलडन फाइनल खेल चुकी राद्वांस्का ने यूक्रेन की कैटरीना कोज़लोवा को सीधे सेटों में 6-2, 6-1 से हराया। कल 2 बार की विंबलडन चैंपियन चेक गणराज्य की पेत्रा क्वितोवा ने भी मंगलवार को रद्द हुआ अपना मैच खेला। 2011 और 2014 की विंबलडन विजेता 9वीं सीट की खिलाड़ी क्वितोवा ने रोमानिया की सोराना क्रिस्टिया को 1 घंटे से भी कम समय में 6-0, 6-4 से हराकर दूसरे दौर में जगह बनाई। लंदन में आज आसमान पर फिर बादल छाए रह सकते हैं, मगर कल की तरह बारिश होने का अनुमान नहीं है। वैसे बारिश के कारण 1.5 दिन का खेल बर्बाद हुआ है, जिससे अब आयोजकों को समय का ख्याल रखते हुए मैचों की व्यवस्था करनी होगी। विंबलडन में पहले हफ्ते के खेल के बाद रविवार को आराम का दिन होता है, मगर 2004 में बारिश की वजह से रविवार को भी मैच करवाने की जरूरत पड़ गई थी। अपूर्व कृष्ण, BBC विंबलडन।
इसके साथ ही वक्त हो चला है नमस्कार भारत में आपसे विदा लेने का, लेकिन पहले सुनते हैं विश्व समाचार एक बार फिर हरिता कांडपाल से।
BBC समाचार। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से बाहर होने के फैसले का असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर लंबे समय तक रहने को लेकर चिंता जाहिर की है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कार्यालय के सूत्रों से खबर आ रही है कि ये माना जा रहा है कि यूरोपीय संघ से ब्रिटेन की विदाई के लिए बातचीत और मोलतोल में 5 साल का समय लग सकता है। सूत्रों का कहना है कि 4 दशकों के समझौतों की जगह ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के बीच नए समझौते करने में लंबा समय लग जाएगा। अमरीकी खुफिया एजेंसी CIA के निदेशक जॉन ब्रेनन का मानना है कि तुर्की में इस्तांबुल के अतातुर्क अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आत्मघाती हमले के पीछे चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट का हाथ है। उन्होंने अमरीका में भी इस तरह के हमलों की आशंका जताई है। BBC समाचार।
नमस्कार, भारत में आज इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे दीपक जसरोटिया। भारत में बज रहे हैं 7:00 PM। अगली मुलाकात ठीक 1 घंटे के बाद विश्व भारती में। तब तक संदीप सोनी के साथ पूरी टीम को दीजिए इजाजत।